ये पचति देवदत्ता में सामानाधिकरण्य की उपपत्ति के लिए तिंग का अर्थ कर्ता मानना चाहिए, वाच्यार्थ कर्ता मानना चाहिए तिंग का, ऐसा व्याकरणों ने कहा, जिसको मीमांसक ने कहा था कि नहीं वाच्यार्थ मानने की जरूरत नहीं है, ये लक्ष्यार्थ मान लेते हैं, लक्षणा से कर्ता अर्थ को ले आएंगे तो सामानाधिकरण्य हो जाएगा। सामानाधिकरण का फिर से याद दिलाता हूँ, एक अधिकरण वृत्तित्वम सामानाधिकरण्यम, एक अर्थ में विद्यमान होना जो है वही है सामानाधिकरण्य। जैसे देवदत्तः का अर्थ है कर्ता, और पचति में जो ती है उसका भी अर्थ है कर्ता, तो एक अर्थ में दोनों पद विद्यमान है, इसलिए दोनों में सामानाधिकरण्य माना जाता है। तो मीमांसकों ने कहा था कि सामानाधिकरण्य मानने के लिए आपको कर्ता अर्थ मानने की जरूरत नहीं है, वाच्यार्थ मानने की जरूरत नहीं है, इसको लक्षणा के द्वारा हम कर्ता अर्थ को ले आएंगे और फिर सामानाधिकरण्य हो जाएगा। इस पर व्याकरणों ने आपत्ति दी कि अगर आप लक्षणा के द्वारा जो है सामानाधिकरण्य को उत्पन्न करेंगे तो फिर पिंगाक्षी और वैष्णोदेवी शब्द जो है वह भी द्रव्य का वाचक न हो करके द्रव्य का लक्षक होने लगेगा, क्योंकि वहाँ भी संबंध अर्थ में समास होता है, संबंध अर्थ में तद्धित प्रत्यय होता है, जबकि आपको जरूरत है संबंधी अर्थ की, तो वह अर्थ आप लक्षणा से लाएंगे, लक्षणा से लाएंगे तो पिंगाक्षी और वैष्णोदेवी जो है यह लक्षक होगा, वाचक नहीं होगा। ये आप ये जो है ना बात व्याकरणों ने मीमांसकों से कही थी। अब इस पर जो है ना एक विचार आता है, अरुणाधिकरण का प्रसंग आता है। ये अरुणाधिकरण जो है ना मीमांसा शास्त्र में बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसको हम लोग प्रकरण कहते हैं ना या सिद्धांत कहते हैं, उसी को वहाँ पर मीमांसा दर्शन में अधिकरण कहा जाता है। तो एक है मीमांसा दर्शन में अनेकों प्रकरण है, उसमें से एक अरुणाधिकरण भी होता है। ये अरुणाधिकरण प्रकरण में क्या है कि एक वाक्य कहा जाता है, अरुणया पिंगाक्ष्या एकहायन्या सोमम क्रीणाति। आप अपनी पुस्तक में भी इस पंक्ति को देख सकते हैं, अरुणया पिंगाक्ष्या एकहायन्या सोमम क्रीणाति। ये कई तरह के यज्ञ होते हैं, तो एक यज्ञ होता है जिसका नाम है ज्योतिष्टोम यज्ञ। यज्ञ और याग पर्यायवाची शब्द है, तो ज्योतिष्टोम याग के प्रकरण में ये पंक्ति जो है बताई गई है मीमांसा में। इसका मतलब होता है कि सोम याग, इसका मतलब समझने के लिए आप समझिए कि सोम याग के लिए, एक सोम याग भी होता है ना, माने उसमें सोम लता होती है, सोम नाम की लता होती है, और उसका जो रस होता है उसको सोम रस कहते हैं, और उस सोम रस के द्वारा जो है ना वह यज्ञ का संपादन किया जाता है। तो उस इस पंक्ति के द्वारा ये कहा गया है कि सोम याग के लिए हिमालय के जो वनवासी लोग हैं उनको ना एक बछिया दे करके, माने गो बत्सा दे करके, और यजमान जो है क्या करे तो उन वनवासियों से सोमलता खरीदे, ये कहा गया। अरुणया पिंगाक्ष्या एक हायन्या सोमम क्रीणाति, माने गो बत्सा दे करके यजमान को क्या खरीदना चाहिए, सोमलता खरीदनी चाहिए, और फिर उसके रस से जो है सोम यज्ञ करना चाहिए। अब ये जो गो बत्सा दी जाएगी खरीदने के लिए, वो गो बत्सा कैसी हो उसके बारे में ये पंक्ति, इस पंक्ति में बताया गया है कि वो किस टाइप की का की वो गोबत्सा हो जिसको दे करके सोमलता खरीदनी चाहिए। तो उसमें कहा गया कि पिंगाक्षी होनी चाहिए, यानी अरुणा होनी चाहिए, माने लाल रंग वाली गोबत्सा होनी चाहिए, फिर पिंगाक्षी होनी चाहिए माने पीली आँखों वाली वो गोबत्सा होनी चाहिए, फिर एक हायन्या, हायनी कहते हैं वर्ष को, तो एक हायनिया माने एक वर्ष वाली जो है वह बछिया होनी चाहिए। तो इस तरह से जो लाल रंग वाली हो, जो पीली आँखों वाली हो, जो एक वर्ष की आयु वाली बछिया हो, गो बत्सा हो, ऐसी गो बत्सा को दे करके सोमलता को प्राप्त करना चाहिए। ये इस पंक्ति का अर्थ है, किसका, अरुणया पिंगाक्षा एक हायन्या सोमम क्रीणाति, क्रीणाति माने खरीदता है, सोमम माने सोम लता को खरीदता है। किस तरह की गोवत्सा से, तो एक हायन्या माने एक साल वाली गोवत्सा से, पिंगाक्षा माने पीली आंखों वाली गोवत्सा से, अरुणया मतलब अरुण कहते हैं लाल को, तो लाल रंग वाली गोवत्सा से। अब ये जो वाक्य है अरुणया पिंगाक्षा एक हायन्या सोमम क्रीणाति, इस वाक्य में क्या है कि पिंगाक्षी जो है ना द्रव्य का वाचक है और एक हायनी जो है वह भी द्रव्य का वाचक है, लेकिन ये अरुणा शब्द जो है यह गुणवाची शब्द है, गुण का वाचक शब्द है। तो इसमें संदेह होता है, मीमांसा शास्त्र में ये विचार किया जाता है कि पिंगाक्षी और एक हायनी जो है वो तो द्रव्य का वाचक है, द्रव्य से यहाँ पर किसको लेंगे, गोवत्सा को लेंगे, तो पिंगाक्षी का अर्थ भी गोवत्सा है, एक हायनी का अर्थ भी गोवत्सा है, तो अरुणा जो है यह गुणवाची शब्द है और पिंगाक्षी एक हायनी द्रव्यवाची शब्द है। तो इसमें मीमांसकों ने ये कहा कि अरुणा का अन्वय करेंगे किसमें, पिंगाक्षी में, और फिर जाकर के क्रीणाति क्रिया के साथ उसका अन्वय किया जाएगा, माने डायरेक्ट जो है क्रीणाति क्रिया में अन्वय नहीं होगा अरुणा का, पहले अरुणा का अन्वय होगा पिंगाक्षी में और पिंगाक्षी का अन्वय होगा क्रीणा, और फिर जाकर के अरुणा का अन्वय क्रीणाति में होगा, माने इनडायरेक्ट अन्वय होगा। अब यहाँ पर आप गौर करिए फिर से कि पिंगाक्षी द्रव्य का वाचक है, एक हायनी जो है वह द्रव्य का वाचक है, लेकिन अरुणा जो है वह गुण का वाचक है, तो यहाँ पर अर्थ में भेद होगा ना। तो अब यहाँ पर मीमांसकों ने ये कहा कि चूंकि अरुणा का अन्वय किसमें करते हैं, पिंगाक्षी में करते हैं, इसलिए सामानाधिकरण्य के आधार पर पिंगाक्षी जैसे द्रव्य का वाचक होता है उसी तरह से अरुणा भी द्रव्य का वाचक हो जाएगा, ये बात मीमांसा में बताई गई है, इसी का नाम है अरुणाधिकरण। तो अरुणा फिर से सुन लीजिए कि पिंगाक्षी द्रव्य का वाचक है, अरुणा गुण का वाचक है, लेकिन अरुणा का अन्वय पिंगाक्षी में होता है, इसलिए सामानाधिकरण्य नियम के आधार पर, सामानाधिकरण्य को मैं आपको बता चुका हूँ, उसमें क्या होता है कि एक ही अर्थ को दो शब्द बताते हैं, तो अरुणा का अन्वय चूंकि पिंगाक्षी में होता है इसलिए जैसे पिंगाक्षी द्रव्यवाचक है उसी तरह से अरुणा भी द्रव्यवाचक माना जाता है, ये बात मीमांसा में कही गई। अगर हम लक्षणा के द्वारा ये करेंगे, जैसे आपने कहा कि देवदत्ता पचति में ती का अर्थ कर्ता जो है हम लक्षणा के द्वारा ले आएंगे, तो आप यहाँ भी फिर लक्षणा कर लेंगे कि अरुणा शब्द जो है इसमें लक्षणा से आप द्रव्य अर्थ ले आएंगे। तो ये जो मीमांसा दर्शन में कहा गया कि सामानाधिकरण के आधार पर जो है अरुणा को भी द्रव्यवाचक मानना चाहिए, ये बात जो है असंगत हो जाएगी, वही कह रहा है। अब फिर से पंक्ति देखते हैं, तथाच माने लक्षणा के द्वारा द्रव्यवाचक अगर बनाते हैं तो अरुणया पिंगाक्षा एक हायन्या सोमं क्रीणाति इति वाक्य, इस वाक्य में द्रव्य अनुक्ते है, तो फिर द्रव्य की अनुक्ति हो जाएगी, माने अरुणा शब्द जो है वह द्रव्य का वाचक नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो फिर लक्षणा से लाएंगे तो द्रव्य का लक्षक होगा, द्रव्य का वाचक नहीं होगा। जबकि मीमांसा दर्शन में सिद्धांत बताया गया कि आरुण्यस्य स्ववाक्य उपात द्रव्ये एव अन्वय, माने अरुण का अर्थ होता है आरुण्य, आरुण्य क्या है गुण, लाल कलर वाला जो गुण है वह हुआ आरुण्य, तो आरुण्य जो है उसका अन्वय स्ववाक्य उपात द्रव्य, माने अपना जो ये वाक्य है अरुणया पिंगाक्षा एक हायन्या सोमम क्रीणाति, इस वाक्य में जो उपात द्रव्य है, उपात द्रव्य माने प्रतिपादित द्रव्य, तो प्रतिपादित द्रव्य इसमें कौन सा है, वही गोवत्सा है, ताकि उस गोवत्सा में ही अन्वय होता है, ऐसा जो अरुणाधिकरण सिद्धांत बताया गया है मीमांसा में, उसका उच्छेदापत्ति, उस सिद्धांत का उच्छेद होने लगेगा, आपत्ति माने होना, तो उच्छेदापत्ति माने उच्छेद होना लगेगा, माने सिद्धांत जो है भग्न हो जाएगा। तो क्यों होगा, तो आगे लिखते हैं कि द्रव्यवाचकत्व साधक मूल युक्ते है सामानाधिकरण्यस्य, कहा कि मीमांसक लोग जो है अरुणा को द्रव्यवाचक कैसे मानते हैं, तो समानाधिकरण्य के आधार पर मानते हैं, क्योंकि अरुणा का अन्वय पिंगाक्षी में होता है और पिंगाक्षी जो है द्रव्यवाचक है, इसीलिए अरुणा भी द्रव्यवाचक होगा समानाधिकरण्य के आधार पर। इस नियम से मानते हैं अरुणा को द्रव्यवाचक, लेकिन जब हम लक्षणा के द्वारा समानाधिकरण्य उत्पन्न करने लगेंगे, जैसा कि आपने देवदत्त पचति में बोला था, तो फिर ये जो आपका सिद्धांत है अरुणाधिकरण सिद्धांत, उसका उच्छेद होगा, उसका वह भग्न होने लगेगा। वही कहा कि द्रव्यवाचकत्व साधक मूल युक्ति, माने अरुणा को जो द्रव्यवाचक सिद्ध किया जाता है उसमें जो मूल युक्ति है क्या, समानाधिकरण्य, वह समानाधिकरण उक्त रीत्या उपपत्ति, उक्त रीत्या माने लक्षणा के द्वारा भी उपपन्न हो जाएगा, तो फिर इस तरह से जो मीमांसा में उसको द्रव्यवाचक माना गया वह बात असंगत होगी, वह बात सही नहीं बैठेगी। इति प्रपंचितम विस्तरेण बृहद वैयाकरण भूषणे, ताकि यहाँ जो बातें बताई गई है यह प्रपंचितम विस्तरेण माने विस्तार पूर्वक जो है यह बताया गया, प्रपंचितम माने प्रतिपादितम बताया गया है, कहाँ पर बताया गया है, तो बृहद वैयाकरण भूषणे। ये बृहद वैयाकरण भूषण क्या है, तो अभी जिस ग्रंथ को आप पढ़ते हैं यह है वैयाकरण भूषण सार, ये संक्षिप्त है, इसका एक बृहत रूप भी है जिसका नाम है बृहद वैयाकरण भूषण। तो दोनों के राइटर एक ही है, कौंड भट्ट। तो यहाँ चूंकि वैयाकरण भूषण सार, सार जो होता है वह तो थोड़ा ही होता है ना, कम होता है, इसलिए यहाँ पर कम में ही इस बात को बताया गया है, ज्यादा जो है बातें इस संबंध में बृहद वैयाकरण भूषण नाम के ग्रंथ में बताया गया। ये इसलिए इन्होंने कहा कि इससे अधिक अगर आपकी जिज्ञासा हो और अगर आप पढ़ना चाहें इस संबंध में, तो आप बृहद वैयाकरण भूषण ग्रंथ को पढ़िए। इतना कह करके आज का पाठ, यहाँ का जो प्रसंग चल रहा है कि तिंग का अर्थ जो है कर्ता कर्म ही होता है, मीमांसक लोग जो तिंग का अर्थ व्यापार या भावना मानते हैं वो सही नहीं है, ये प्रसंग यहाँ पर खत्म होता है। अब लास्ट उपसंहार करते हैं कि तिंगह इति, वो जो कारिका थी ना, फल व्यापारी और धातु आश्रयेतु तिंगह स्मृताः, ये जो यहाँ पर तिंगह कहा ना उसके बारे में बताते हैं। तिंगह इति बोधकता रूपा शक्ति तिंक्षु एव इति अभिप्रेत्य इदम्। यहाँ ये समझिए कि ये जो कहते हैं ना कि इस शब्द का ये अर्थ है, जैसे कहते हैं कि तिंग शब्द का अर्थ आश्रय है, तो ये अर्थ, इसका अर्थ ये है, ये कैसे कहते हैं, तो वह कहते हैं शक्ति के आधार पर। शक्ति क्या है, मैंने बताया हुआ है कि शब्द और अर्थ में रहने वाला जो संबंध है उसका नाम है शक्ति। तो तिंग पद में एक शक्ति रहती है, उस शक्ति के आधार पर तिंग का अर्थ जो है वह कर्ता, वह आश्रय होता है। अब आश्रय क्या है, तो फलाश्रय व्यापार आश्रय है, फलाश्रय व्यापार आश्रय क्या है, तो कर्ता कर्म है, ये सब आप जानते हैं। केवल यहाँ पर ये आप समझिए कि जब जैसे कहेंगे ना कि घट शब्द का अर्थ घरा होता है, इसका मतलब है कि घट शब्द में घरा अर्थ को बताने की शक्ति रहती है, इसलिए घट शब्द का अर्थ घरा होता है। ऐसे ही अगर कहते हैं कि तिंग का अर्थ आश्रय है, इसका मतलब हुआ कि तिंग पद में आश्रय अर्थ को बताने की शक्ति रहती है, इसलिए तिंग का अर्थ आश्रय होता है। अब यहाँ पर एक मन में प्रश्न उठेगा कि वह जो शक्ति है उसका स्वरूप क्या होता है, माने शक्ति कैसी होती है, किस टाइप की होती है, तो उसके लिए बताया बोधकता रूपा शक्ति। शक्ति जो है वह उसका रूप कैसा होता है, तो बोधकता रूप होता है। बोधकत्वम शक्ति, बोधकत्वम क्या, बोधक समझते हैं ना, बोध कराने वाले को बोधक कहते हैं, और बोधक में रहने वाला जो धर्म है उसको बोधकत्वम कहेंगे अथवा बोधकता कहेंगे। तो बोधकता रूपा शक्ति जो है तिंगछु माने तिंग में रहती है, इसीलिए उस बोधकता रूपा शक्ति से तिंग पद जो है आश्रय अर्थ को बताता है। इति अभिप्रेत इदम्, ऐसा अभिप्राय करके यह पंक्ति उसमें जोड़ी गई कारिका में कि आश्रय तो तिंगह स्मृताः। तो आज का पाठ यहीं रखते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे।